अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातीतरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः।
बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पे आप देख रहे हैं शब्द अन्ये त्वेवम् अजानन्तः, कि भले ही और ऐसे कुछ लोग और हैं भी जो इन पद्धतियों को नहीं जानते। किन पद्धतियों को? सांख्य योग, कर्मयोग, ध्यान इत्यादि नहीं जानते, उनका हृदय शुद्ध भी नहीं है। लेकिन श्रुत्वान एभ्य उपासते, मतलब श्रुत्वान अन्येभ्य उपासते, अन्यों से सुन करके भगवान का भजन शुरू करते हैं। वस्तुतः अगर आप देखें तो हम सभी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। किसको पता था कि भगवान का ध्यान करना चाहिए, किसको पता था कर्मयोग क्या होता है, बल्कि कर्म की जगह विकर्म योग हमको पता था। विकर्म करना तो सबको प्रोग्रामिंग होती है, अब वैसे विकर्म करना भी हम लोग सुन करके सीखते हैं, लेकिन विकर्म में ही व्यक्ति फंसा रहता है। तो आप देखेंगे कि 99.9% हम सब लोग सुन करके ही भगवान का भजन करना शुरू किए। ये बड़ा सुंदर है, यानी कि ये जो तीन चार लोग जो हमने पहले चर्चा किया था, वो लोग भले ही शास्त्र पढ़ करके भगवान के भजन करने लग जाएं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल दूसरों से सुनकर ही भजन करते हैं। ना वो शास्त्र पढ़ते हैं, ना शास्त्र समझ में आता है, लेकिन भगवान का दिव्य नाम जप करके, भक्ति करके, भक्तों का संग करके वो भगवान का भजन करने लगते हैं। और वो क्या लाभ होगा उनका? वो कह रहे हैं तेपी चाती तरंत एव मृत्युम श्रुति परायणा, तरंत एव निश्चित रूप से, वो भी जो उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अर्थात वो खुद शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, लेकिन वो भी मृत्यु को पार कर जाएगा। तरंती, तरंती शब्द है यहाँ पे आ रहा है, अति तरंती, निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। तरती नहीं लिखा है, तरती होता एक वचन, तरंती मतलब बहुवचन, बहुत सारे लोग जाते हैं, पार कर जाते हैं, प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस का मतलब आज भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। कौन? श्रुति परायण, परायण मतलब लगे रहते हैं श्रवण के बारे में, भगवान के बारे में श्रवण करने से, भगवान के बारे में श्रवण करके, भगवान में प्रेम उत्पन्न करके, भगवान की सेवा करके वो भगवान के पास चले जाते हैं। भले ही उनको शास्त्र का ज्ञान अपने से बहुत ना हो, लेकिन साधु गुरु के मुख से सुन करके श्रद्धा से और भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं। ये बहुत लाभकारी है। क्यों? क्योंकि एक माता जी जो बिल्कुल अनपढ़ हो, वह भी भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान के धाम जा सकती है, वो भी भगवान को भोग लगा सकती हैं। कोई बहुत शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। मैं गांव में गया था तो हम लोग ने हरे कृष्ण मंत्र एक पोस्टर पे लिखा हुआ था, तो एक माताजी या कई दो चार माताजी ऐसी थी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी और पूछ रही थी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो भले ही वो उसको पढ़ ना सके, लेकिन जब हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोले तो हरे कृष्ण मंत्र उन्होंने भी बोला और वो जप करना सीख गई। तो आप देख सकते हैं कि भगवान का नाम जप करने में, भगवान की भक्ति करने में ये योग्यता भी नहीं है। केवल अगर योग्यता है जो आवश्यक है वो है कि हम कान से सुने और सुन करके उसको समझें और समझने के बाद भगवान की भक्ति में लग जाएं। नारद मुनि भी इस प्रकार से थे। यस, नारद मुनि का भी उदाहरण आप अच्छा दे रहे हैं। जो 5 साल के बच्चे को क्या ज्ञान था, ध्रुव महाराज को क्या ज्ञान था 5 साल में, वो तो गुरुकुल में भी नहीं गए। वैदिक सभ्यता में 5 साल में बच्चा गुरुकुल जाता था, तो गुरुकुल भी नहीं गए थे। थोड़ी बहुत संस्कृत जो सीखे थे वो घर में सीख लिए होंगे। दासी पुत्र थे और एग्जैक्टली क्या योग्यता थी। तो आप देखें, सुन करके भगवान का भजन करना सीख लिया और अति तरंती हो गई, और अति तरंती ही नहीं हुए, अन्य लोगों को भी तर रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम पढ़ें तो ठीक है, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन साधु गुरु से सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से व्यक्ति अधिक सीख पाता है। वस्तुतः शब्द में शक्ति होती है ज्ञान की, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, तो सुनना बहुत जरूरी है, सुन के व्यक्ति इसलिए अधिक सीख पाता है। ठीक है, तो हम एक बार श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका को देखेंगे। तो वो यहां पर कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन पथों को नहीं जानते, जिनकी चर्चा की गई थी 25वें में, लेकिन उनकी श्रद्धा होती है वेदों में। वहां पे ये ले रहे हैं श्रुति परायण का अर्थ है, श्रुति मतलब वेद और श्रुति परायण मतलब वेदों में श्रद्धा है। वेदों को जानते नहीं है, वेदों में श्रद्धा है। जैसे भारत में किसी को पूछो आप भगवद्गीता को सही मानते हो, बोले हाँ मैं मानता हूं। आप भगवद्गीता पढ़े हो? नहीं। तभी देखिए कि पहले की पुण्य जो कार्य है उसकी वजह से उसकी सहज रूप से भगवत गीता भागवतम में श्रद्धा है, एकदम सहज रूप से साधुओं में श्रद्धा है। और वो गड़बड़ भी बोलेंगे साधु तो भी श्रद्धा रहती। लेकिन अब तो यहां पे इसको अर्थ ले रहे हैं श्रुति परायणा का अर्थ है, श्रुति मतलब वेद, और पारायण मतलब वेदों में श्रद्धा है, तो वेदों को सुनने में श्रद्धा है, पता नहीं है तो साधुओं से सुन करके वो योग्य बन जाते हैं। उसके बाद यहां पे शब्द आ रहा है अन्यभ्य, दूसरों से इन पद्धतियों के बारे में सीख करके, जो भगवान की भक्ति के बारे में बताएंगे या सांख्य के बारे में बताएंगे, कुछ भी करके बताएंगे, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार से भक्तों के संघ के द्वारा, उसके द्वारा भक्ति के प्रोसेस को समझने के द्वारा और उसके अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से वो मृत्यु को तर जाते हैं। तो यहां पे श्रवण के अभ्यास की अद्भुत शक्ति को समझाया गया है। तो इस श्लोक का टॉपिक क्या है कि सुन करके हम मृत्यु को पार कर जाते हैं। अब हम लोग अनुवाद तात्पर्य देखेंगे, अनुवाद पढ़िए।
ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों में श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं।
तो ये देखिए कितना बड़ा लाभ है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पूरा इस्कॉन मूवमेंट ही इसलिए बना है ताकि लोगों को कृष्ण के बारे में प्रामाणिक रूप से श्रवण करने का मौका मिले, और इसके लिए टेक्नोलॉजी का या और किसी चीज का भी उपयोग करें, लेकिन हमें लोगों को मौका देना चाहिए ताकि वो भगवान के बारे में सुन सकें। और चैतन्य महाप्रभु भी इसी साधन को स्वीकार करते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी बोलते हैं स्थाने स्थित श्रुतिकताम तनुवांग मनोभी ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एव जीवंत सन मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी ये प्रायशो जित जितोपसित त्रिलोक्यम। भगवान को जीतना असंभव है, उनका नाम अजित है, लेकिन वो भगवान जीते जाते हैं उस भक्त के द्वारा जो अपने स्थान में स्थित होकर के भगवान के बारे में श्रवण करता है। इस श्लोक के बड़े गहरे अर्थ हैं, थोड़ा मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ज्ञाने प्रयास में उदपस्य, भगवान को जानने का अपनी शक्ति का जो प्रयास है, अपनी इंद्रियों के द्वारा जानने का प्रयास, उसको उदपस्य भक्त त्याग देते हैं, बिल्कुल नहीं इसको उस पर प्रयास करते। तो क्या करते हैं, जीवंत सन मुखरितम भवदीय वार्ताम, भवदीय मतलब आपकी, ब्रह्मा जी ये प्रार्थना भगवान कृष्ण को कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपकी वार्ता में ही वो जीते हैं, वही वो कथा ही उनका जीवन होती है। और प्राय लोग बोलते हैं कि साइलेंस इज गोल्ड एंड स्पीच इज सिल्वर, कि जो व्यक्ति बहुत ज्ञान में बढ़ जाता है वो चुप हो जाता है, ये तो मूर्खता की बात है। जिसको अधिक ज्ञान होगा वो और भगवान के बारे में बोलेगा, और इस चीज को ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, कह रहे हैं जीवंत सन मुखरितम भवदीय वार्ता, मुखर मतलब जो व्यक्ति बहुत बोलता है, तो जो भक्त हैं वो भगवान का अनुबोध प्राप्त करके, भगवान की भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर खूब बोलते हैं, और वो बोलना ही उनको परम आनंद देता है, और इस प्रकार की कथा ही उनका जीवन होती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्थाने सता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, यहां पे भी आ रहा है श्रुतिगताम, और यहां पे शब्द आ रहा है श्रुति परायण, दोनों ही एक बात है। श्रुतिगताम मतलब वेदों से, प्रमाणिक शास्त्र से सुनते, ये नहीं कि अपने मनगढ़ंत तरीके से लोग सुनने लगे, जैसे कि लोग बोलते हैं रात शाम सपने में आए दहिया पी गए सारा रा, रा, रा। अब ये कोई वेदवाणी थोड़ी ना है। तो इस प्रकार की गुणगान कृष्ण का ये कोई सही गुणगान नहीं है, प्रमाणिक शास्त्रों से, प्रमाणिक आचार्यों के मुख से व्यक्ति सुनता है, इसी को कहते हैं श्रुतिगताम, और यहां लिखा है श्रुति परायणा, एक ही बात है। तो वहां पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि स्थाने स्थितः, अपने घर पे ही रहता है, मान लीजिए वो गृहस्थ, या अपने स्थान का मतलब है गृहस्थ आश्रम में है मान लीजिए, तो उसे संन्यास लेने की जरूरत नहीं, लेकिन वो भगवान के बारे में सुने। कोई ब्रह्मचारी है तो उसे गृहस्थ बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो भगवान के बारे में सुने। जो सन्यासी है वो अपने अपने आश्रम में रहे, अपना आश्रम परिवर्तन करने की बजाय अपने कानों के विषय को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, उससे हम लोग अति तरंतेव मृत्यु हो पाएंगे, मृत्यु को बढ़िया से हम पार कर जाएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, इसलिए मैं इस श्लोक को कोट कर रहा हूं, जो कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भी आ रहा है। और वो बोलते हैं इसके बहुत सारे अर्थ है, एक अर्थ ये भी है कि जहां भक्तों की कथा चल रही हो वहां जाकर सुनना चाहिए। और आप तो देखिए इतना सुंदर व्यवस्था है कि अपने आप मोबाइल फोन में एक बटन दबाएंगे तो भगवान के बारे में सुन सकते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के बारे में सुनने से भगवत प्रीति होती है, और भगवत प्रीति होगी तो भगवान का स्मरण होगा, भगवान का स्मरण होगा तो हम मृत्यु को बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। अपितु जितना समय हम भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा रहे हैं वो समय मृत्यु से छीन लिया गया है, मृत्यु सबको छीन रही है, सब कुछ हमारा छीन रही है हर क्षण, लेकिन जो समय हम भगवान की कथा में लगाते हैं उसको मृत्यु नहीं छीन सकती है। तो इतना सुंदर श्लोक है ये श्रवण के बारे में, तात्पर्य को देखेंगे।
यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ओके, तो कुछ चीजों पर हम चर्चा करेंगे। एक बात कि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा तो नहीं दी जाती है, अपितु आध्यात्मिक विषयों को हे माना जाता है कि ये तो खराब चीज है, ये तो बैकवर्ड लोगों के लिए है। और जो लोग फॉरवर्ड हैं, फॉरवर्ड का मतलब खाई में गिर रहे हैं फॉरवर्ड जाकर के, उन लोगों को भौतिक विषयों की बहुत बढ़िया से ज्ञान होना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर मुझे इस जगत में सब कुछ पता हो, भले पता हो अगर, तो और अपने बारे में पता नहीं हो, तो क्या ये सही बात है? क्या ये बुद्धिमानी है? व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि प्लान करके, योजना बना करके आध्यात्मिक विषयों की कोई शिक्षा नहीं दी जाती, और अगर दी भी जाती है तो उसको, पहली बात यही कहना चाहिए कि दी ही नहीं जाती है, और जो थोड़ा बहुत मॉरल वैल्यूज दी जाती हैं वो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, मान लीजिए जूस बनाना है आपको नींबू का जूस, तो एक ड्रम पानी में अगर आप 5 ग्राम चीनी डालेंगे तो कितनी मिठास आएगी। तो मैं एक एजुकेशनिस्ट से बात कर रहा था, तो मैंने कहा उद्देश्य क्या है पढ़ाई का, तो बोले कैरेक्टर का निर्माण। हमने कहा मॉरल एजुकेशन की क्लास कितनी होती है? हफ्ते में एक बार। तो मैंने कहा क्या ये आपकी धोखाधड़ी नहीं है? तो चुप हो गई। तो खैर, कहने का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, इस बारे में कोई व्यक्ति प्रयास ही नहीं कर रहा है। और कुछ लोग अगर हैं भी, कुछ थोड़े बहुत दार्शनिक होते भी हैं, तो ऐसे अपने मतामत प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः वो अपने मतामत ही प्रस्तुत करते हैं, श्रुति परायण नहीं होते। उन्होंने उनसे पूछा जाए कि भाई आपके गुरुजी कौन हैं और वो कौन सी परंपरा में हैं, तो वो कोई उत्तर नहीं देंगे। कहते नहीं, तुम्हें कोई गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने गुरु स्वयं बनो, और वो हमारे गुरु बन जाते हैं इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे लोगों से श्रवण करके व्यक्ति मृत्यु को पार नहीं कर सकता। और बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपको टेस्ट करना है तो ऐसे लोगों को पूछिए कि भाई ज्यादा बात मुझे मत बताओ, ये बताओ कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे छूटूंगा, इसका कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? और अगर नहीं है तो मत बताओ, फिर चुप रहो। इतना जैसे कि उदाहरण ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, उसी को हम भी यहाँ पे कोट करेंगे। आप मान लीजिए भूख लगे और आपको दाल चावल खाना है, और दाल चावल खाना है तो चावल की जगह आपको चावल की भूसी दे दी जाए, और बोले इसे कूटिए और कूटने के बाद आपको चावल मिल जाएगा। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ऐसी डील में इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है? तो व्यक्ति को प्रमाणिक रूप से श्रुति परायण होकर के, वेदों में विश्वास रख करके सुनना चाहिए। इसके विपरीत आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति, अर्थात जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो, जो बहुत अधिक तथाकथित रूप से ज्ञानवान ना हो, जो बहुत धनवान भी ना हो, लेकिन अगर वो पुण्यात्मा है तो आप देखेंगे पुण्यात्मा होने के कारण उसकी वेदों में श्रद्धा होती है। और जो पापी लोग होते हैं उनको बाह्य रूप से भले ही भौतिक योग्यता बहुत अधिक हो, लेकिन उनका वेदों में कोई विश्वास नहीं होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात हमने आपसे सीखी है कि व्यक्ति जब पुण्यात्मा होता है तो उसको भगवान की भक्ति में, वेदों में श्रद्धा होती है, वो स्वाभाविक रूप से श्रुति परायण होता है। और इस कारण से जब साधु गुरु बोलते हैं तो फिर वो सुनता है नम्रता से। इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं आगे बताया जाएगा।
आधुनिक जगत में कृष्ण भावनावृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया है, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रमाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतया चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने, इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्ति को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक सामान्य व्यक्ति को अगर आप बताएं कि देखिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप करेगा वो कलयुग के सारे दुष्प्रभावों से मुक्त होकर के भगवान के धाम चला जाएगा, तो सामान्य व्यक्ति कभी रिसर्च नहीं करता इस बात पे। अच्छा ठीक है, नारद जी ने बोला है, ब्रह्मा जी ने बोला है, भागवत में लिखा हुआ है, ठीक है मैं करूंगा। लेकिन जो लोग अश्रद्धालु हैं वो सारे ज्ञान होने के बावजूद भी इस पर श्रद्धा नहीं रखते हैं और भगवान का नाम जप नहीं करते। दूसरी चीज और है कि जैसे जैसे व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र की जप करता है तो इसका जो श्रवण को सुन रहा होता है उसकी गहराई को वो और समझ पाता है। ये बड़ा सुंदर कार्य करता है। श्रवण के द्वारा हमको श्रद्धा होती है भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, और जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो और श्रद्धा बढ़ती है भगवान के नाम में। फिर नाम जप करते हैं और हृदय शुद्ध होता है तो फिर और कथा में श्रद्धा आती है, जबरदस्त पुण्य प्राप्त होता है, फिर और श्रद्धा बनती है। तो ये आपस में एक दूसरे का पूरक है, लेकिन शुरुआत होती है भगवान की कृपा से, भक्तों के संग से, भक्तों के संग में आकर सुनने का मौका मिले। इसीलिए जब कभी किसी व्यक्ति को धाम में आने का मौका मिले तो उसे भक्तों का संग में आकर भगवान के बारे में सुनना चाहिए। आगे बताइए।
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि समान व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रमाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने से उसे सहायता मिलेगी।
बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप देखेंगे कि आप अगर आप समझ पा रहे हैं तो जो मैंने श्लोक कोट किया था वही प्रभुपाद उसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमन्तैव जीवंत सन मुखरितम भवति वार्ताम स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि ये प्रायशो जित जितो सपि तैस्त्रिलोक्यम। एकदम अब मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद ने स्पष्ट यहाँ पे बोल दिया है कि भक्तों की शरण लेने का अर्थ है भक्तों के मुख से सुनना। जैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने का मतलब ये नहीं होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंटीन में खाना खा के आ जाए। आप कह सकते हैं हाँ मुझे दाखिला मिला, मैं बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर गया, काफी समय बिताया और कैंटीन में खाना खा के आ गया। वहां जाके मेहनत करनी होती है और मुख्यतः किसी कॉलेज में जाने का उद्देश्य है सुनना। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में सबसे ज्यादा प्रबल है श्रवण, क्योंकि जब श्रवण ठीक होगा तो हमारा भक्ति के हर अंग के प्रति जो हमारा मनोभाव परिवर्तित हो जाएगा। चाहे हम जप कर रहे हो, चाहे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, चाहे भगवान का प्रसाद ले रहे हो, सभी भक्तों से बर्ताव कर रहे हो, सभी के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा मनोभाव है, वो चेंज हो जाएगा। और जब हमारा एटीट्यूड सही हो जाएगा तो भक्ति की हर क्रिया हमको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त करेगी। हमारी इंटेंशन चेंज हो जाएगी तो हमारी भक्ति भी उस प्रकार से बढ़ेगी। इसीलिए श्रवण आधार है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा आधार के संबंध में, भूमि अगर बढ़िया है तो उस पर आप अलग अलग फसलें उगा सकते हैं। तो मेन आधार जो है वो भूमि है। तो अगर हम श्रवण ना करें ठीक से भगवान के बारे में तो भी, और ठीक से ना करें और रेगुलरली ना करें, आप देखेंगे आध्यात्मिक विषय प्रायः बहुत धीरे धीरे घुसते हैं। तो इसलिए बार बार श्रवण करने से तो पहली बात याद होते हैं, इसे कहते हैं स्मरण दशा, और वर्ण दशा मतलब स्वीकार करने वाली स्टेज बाद में आती। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति को अगर मौका मिल रहा है प्रामाणिक व्यक्ति से सुनने का तो जरूर वो सुने, समझे और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करे। कोई प्रश्न है तो?